ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت پائی, جنہوں نے ہدایت پالی نا, پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پہ جو چل پڑتا ہے نا, اللہ تعالیٰ پھر اس کی ہدایت بڑھاتا رہتا ہے, کیونکہ جیسے جیسے اس کو علم آتا ہے, اللہ کی اور پہچان ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہدایت بڑھتی جاتی ہے پھر, سبحان اللہ, بشرطے کہ وہ اس راستے پہ چلتا رہے. سمجھ لیں کہ ایک ہائی وے ہے نا, ہائی وے پہ آپ چل رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ ایسے ہی میں کہہ رہی ہوں, مثال کے طور پہ آپ سوچے یہ ہائی وے جو ہے نا, یہ صراط مستقیم ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر چلتے رہیں گے نا, اللہ تعالیٰ ہدایت میں اور بڑھاتا رہتا ہے, بڑھاتا رہتا ہے, بڑھاتا رہتا ہے, آگے چلاتا رہتا ہے. لیکن اگر انسان اس راستے کو چھوڑ دے گا نا, اور یہ سوچے کہ چلو بھائی نیچے کتنا میلا ٹھیلا لگا ہوا ہے, ذرا میں اتر کے تو دیکھوں اس ہائی وے سے, ایگزٹ لے لیتا ہے, چلو وہ میں ذرا گھوم کے آتی ہوں نیچے سے, بس وہ جو وہ کتنا خوبصورت سین نظر آ رہا ہے, تو بتایا یہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے نا ہی, آپ اس کے واقعی وہ وہاں سے اٹریکٹو نظر آتی نا, آپ اتر جاتے ہیں, بس پھر تو لاسٹ ہو گئے, اترنا نہیں ہے اس سے, اس کے اوپر ہی چلتے رہیں گے تو اللہ ہدایت بڑھاتا جائے گا, جیسے اللہ کی پہچان آتی جائے گی اور دل کھلتا جائے گا, شرح صدر ہوتا جائے گا, ہدایت بڑھتی جائے گی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا, اور باقی رہنے والی, یہ والی بات باقیات الصالحات ہم پہلے کہاں پڑھ چکے ہیں, سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا نا, باقیات الصالحات, میں نے آپ کو بتائی بھی تھی نیکیاں, ہر طرح کی نیکیاں, تو یہ پتہ ہے یہ جو نیکیاں ہیں نا, یہ زیادہ بہتر ہیں اللہ کے نزدیک. کس چیز میں, کس چیز میں اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے, ثواب پانے میں اور انجام کے اعتبار سے, کیونکہ یہ باقیات ہے نا, یہ باقی رہنے اور ایور لاسٹنگ ہے, ایور لاسٹنگ, یہ ختم نہیں ہونی, تو وہاں پہ بھی جا کے ملیں گے اس کا اجر. ہم کھاتے پیتے سوتے جاگتے, ہم جاب پہ جاتے یہ کرتے, سب چیزوں نے ختم ہو جانا, ہاں ایک دن وہ بھی آئے گا نہ, یہ فکر ہوگی بچے سکول گئے کہ نہیں, فلاں بچہ گھر آیا کہ نہیں, ہسبینڈ جاب پہ گئے تھے وہاں پہ صحیح پہنچے کہ نہیں, میں نے فلاں پارٹی پہ جانا ہے اس کے لیے میرے پاس کپڑے ہیں کہ نہیں, شادی پہ اٹینڈ کرنی ہے, اس کو کس دن ہے, کہاں جانا ہے, اس کے لیے ٹکٹ کرائے کہ نہیں, فلانے کا کیا حال ہے اور فلاں کا کیا حال ہے, ذرا فون کر کے پوچھو, سب فکریں ختم ہو جانی, سب چیز ہی ختم ہو جانی ہے, ایک باقیات صالحات رہ جانی ہے. جن چیزوں کی ہمیں فکر آج زیادہ ہے وہ تو رہنی نہیں, اور جن کی فکر ہی نہیں آج لگی ہوئی وہ رہ جانی, تو پھر خود کو اس میں کیوں نہ انویسٹ کریں, اس میں کیوں نہ کھپائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نا اسے تو ختم ہو جانا, جو اللہ کے پاس ہے یعنی جو آپ نے اللہ کے پاس بھیج دیا اپنا سب کچھ, اور جو اللہ کے پاس جنت ہے وہ باقی رہنے والی, سبحان اللہ, ثواب میں بھی اور مردہ نتیجے کے اعتبار سے, کانسیکوینس آؤٹ کم, یعنی اپنی انرجی آپ کہیں پہ بھی لگا دیں گے نا وہ چیز بھی وہ کام بھی ختم ہو جائے گا, لیکن جو نیکی میں لگا دیں گے وہ باقی رہے گی. تو اس لیے انسان کیوں نہ اپنے آپ کو انویسٹ کرے ان چیزوں میں. آپ دیکھیں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں نا, تو پھر ہمیں نمازوں کے پڑھنے کے بعد یا قرآن پڑھتے ہیں کلاسز لیتے ہیں تو ہمیں یہ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد تو میرا کاروبار بھی اچھا ہو جانا چاہیے, میں جو قرآن پڑھتی ہوں تو میری جاب بھی بہترین ہو جانی چاہیے, میں جو یہ میں نے صدقہ کیا تو میرے بچوں کے رشتے بھی بہت اچھے ہونے جانی چاہیے, ایسے بھی ہو جانا چاہیے. اس کا مطلب آخرت پہ ایمان کمزور ہے. ٹھیک ہے, نیک کام کرنے سے آپ کے دنیا کے کاموں کو اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ بنا دیتا ہے, لیکن یہ نہ سوچیں کہ بل عیش آ جاتے. ٹھیک ہے, اصل یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پرسکون کر دیتا ہے اس زندگی کو جب آپ نماز پڑھتے, قرآن پڑھتے, ذکر اذکار کرتے, درود پڑھتے, تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا اس طرح سے بدلہ دے دیتا ہے. لیکن اصل ٹارگیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے, اصل ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ جب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں نا, جب میری میت جب قبر میں اتاری جا رہی ہو نا, تو یہ جو آج کے میرے کیے ہوئے نیک اعمال ہیں نا, اس وقت ये मेरे काम आ जाए, उसके बाद मेरे साथ चले जाए कब्र में। आज का ये जो पढ़ना है ना, ये जो मैं इस वक्त कुरान के आगे बैठी हूँ पढ़ रही हूँ, आज की ये जो मेरी कोशिश है ना, आज का ये जो मेरा टाइम लगाना है ना, मेरा ये टारगेट होना चाहिए कि ये उस वक्त जिस वक्त मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ तो ये मेरे लिए सिफारिश करने वाला बन जाए, मेरे साथ खड़ा हो। ये बाकियात तो सालेहात है, और ये तभी साथ जाएंगी जब ये खुलूस के साथ की जाए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाए, वाह वाह के लिए ना की जाए, शोहरत के लिए ना की जाए। तो फिर ये लौटने के लिहाज से भी बेहतर, एक माना इसका ये भी है कि जब इंसान लौट रहा हो तो उसके साथ ही ये नेकियां भी जा रही हैं, तभी फायदा है ना। अगर यहीं रह गई तो क्या फायदा होगा। अब इसीलिए देखे ना आप, बाकी या तो सालेहात में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये सब बाकी या तो सालेहात है। इनसे क्या होता है, इनसे इंसान के गुनाह ऐसे झड़ते हैं, ऐसे झड़ते हैं कि जैसे फरमाया दरख्त के पत्ते झड़ते हैं ना, उस तरह से इससे इंसान के गुनाह झड़ जाते हैं उसकी जिंदगी से। सुभान अल्लाह, सूखे पत्ते फॉल में खिजा में झड़ते हैं जैसे। तो कभी हम ये तस्मिया ये सोच के भी करते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे गुनाह झड़ गए, कितने सारे मेरे गुनाह झड़ गए होंगे, चलो गुनाहों को झाड़ने के लिए आज एक तस्बीह कर लेते हैं। ये इस तरह से सोचते हैं, ये बाकियात सालेहात है, इन्होंने मेरे साथ जाना है, मैंने मर जाना है, मेरे ना बच्चे जाएंगे, ना मेरे कपड़े जाएंगे, ना मेरे जेवर जाएंगे, ना हस्बैंड, ना माँ बाप, कोई भी नहीं साथ जाना। तो मेरी बाकियात तो सालेहात नहीं जाना है, मैं अब बैठ के अपनी बाकियात तो सालेहात जमा करूँ। आपसे सलम ने फरमाया जो शख्स कुल हो अल्लाह, ये जो सूरह इखलास है, 10 दफा पढ़ लेता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक महल तामीर कर देता है, महल मिल जाएगा। बाकियात तो सालेहात है ना। तो हज़रत तो उमर फरमाते हैं फिर तो हम बहुत सारे महल बना लेंगे, हम तो इस काबिल भी ना हुए कि हम बहुत सारे महल ही बना लेते। तो इतनी अलग हदीस सुन के भी फिर भी नहीं हम करते, तो वो उन्होंने करनी थी ना, तो वो कहते हैं हम तो फिर बहुत सारे बना लेंगे। आपने जवाब दिया अल्लाह के पास कोई कमी नहीं, वो तो बहुत बेहतर देने वाला। और जो अल्लाह के रास्ते में 1,000 आयतें पढ़ ले, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसे अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालेहीन में लिख लेगा। तो सुभान अल्लाह, यानी एक दिन में 1,000 आयतें पढ़ ले कोई। तो ये बाकियात तो सालेहात बन जानी है, जैसे जो जिसके 3 बच्चे फौत हो गए, वो उसके ऊपर सबर करता है तो उसको उस आग भी नहीं छुएगी मगर सिर्फ कसम पूरी होने तक के लिए, मतलब ऐसे कि बस आग को ऊपर से गुजर जाएगा, छुएगी नहीं उसको, उसके सबर की वजह से। तो ये बाकियात तो सालेहात है, वो मतलब ये बाकी रहने वाली नेकियां है ना, और भी बेशुमार नेकियां हैं। जितनी भी आप नेकियां करें, जितनी भी आपने जो कुछ भी किया अल्लाह की खातिर इसको राजी करने के लिए, वो बाकी रह जाएंगी और वो बेहतर हैं इन उन सब चीजों से जो कि हम जमा करते हैं, जिन पे हम अपना वक्त लगा रहे हैं, जिन पे हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, जिनके लिए पीछे हम खपते फिर रहे हैं। तो दिल का सुकून तो मिलेगा ही मिलेगा, वो भी है आखिरत में, इतना कुछ मिलेगा कि इंसान सोच ही नहीं सकता। तो जो अल्लाह को राजी करना चाहता है ना, तो बाकियात तो सालेहात में अपना वक्त लगाए, वो बेहतर है अल्लाह के नजदीक, यानी अल्लाह उनसे बहुत खुश होता है। आपके पैसा कमाने से, आपके ये करने से कोई, या आप बहुत मालदार हो गई, आपने बड़ा खूबसूरत घर बना लिया, इससे कोई नहीं अल्लाह ताला खुश हो रहा, आपकी बाकियात तो सालेहात से खुश होना है उसने। कफर भी आया थी ना, क्या भला देखा तुमने उस आदमी को जिसने कुफर किया हमारी आयात के साथ। वकाल लऊतैन्न मालम वलदा, और उसने कहा कि मैं तो अलबत्ता जरूर दिया जाऊंगा माल और औलाद। और अगली आयत भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। अतला लगैबा, क्या उसको गैब की इतला मिल गई, अम इत्तखज़ इंद रहमानी अहदा, या उसने रहमान से कोई अहद लिया हुआ। एक तो ये खास कॉन्टेक्स्ट में आई, उसके अलावा भी फिर देखिए एक खसूसी भी कॉन्टेक्स्ट होता है किसी आयत का, और एक अमूमी भी होता है, जनरल भी होता है माना। तो खास माना तो ये खब्बाब बिन अरत जो थे ना, वो पता है गुलाम थे, वो लोहार का काम करते थे। तो उन्होंने किसी के पास मजदूरी की, कहते हैं उसका फिर कर्ज, उसने पैसे ही नहीं दिए, उसका कर्ज, उसके जिम्मे कर्ज था इनका, उससे पैसे मांगते रहते थे, जाते थे उसके पास, तो वो नहीं देता था। ये एक दिन कहता है कि मैं तेरे कर्ज को उस वक्त दूंगा जबकि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी से निकल जाए, उनका इनकार करते। तो हालांकि एक गुलाम है, वो सोचेंगे उनको कितनी ही पैसों की जरूरत होगी, पता नहीं कितने मजबूर होंगे, कुछ गुलाम बेचारे तो गरीब ही होते थे। आज तो पता हमें चल जाए कि जी जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन जॉब के लिए आपको ये करना होगा, इस्लाम के हटने की कोई बात हो, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने की कोई बात, तो कहते हैं हाँ अल्लाह को हुक्म तो बाद में मान लेंगे, कोई बात नहीं है, जॉब ना चली जाए ना, क्या करूं फिर, जॉब की रिक्वायरमेंट है ना ये, जॉब कहती है नमाजी नहीं पढ़ सकते, आप नमाजों के लिए जा ही नहीं सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं, देखिए जॉब है ना, यानी जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो उनके लिए तो पैसे कितने इंपॉर्टेंट थे, अंदाजा करें ना, गरीब आदमी है, उसकी मजदूरी देनी है, तंग कर रहा है, एक आदमी नहीं दे रहा, तो बोलना ही है ना, तो भी कह देते मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ पैसे लेके, तो उसके बाद फिर कह दूंगा मुझे क्या। लेकिन ईमान सोचिए सुभान अल्लाह, उनके कैसे मजबूत थे। तो आगे से क्या कहती है कि मैं तो ये कुफर कह ही नहीं सकता, तू मर के दोबारा जिंदा भी हो जाए ना तब भी नहीं मैं कहूँ। तो उस आगे से उस काफिर ने कहा, आस बिन वाइल ने, कि अच्छा फिर यही जवाब रहा, जब मैं मरने के बाद जिंदा हो जाऊंगा ना, फिर तुझे दे दूंगा तेरा माल, वहां पे तो मेरे पास जरूर ही माल भी होगा, औलाद भी होगी, जाहिर है जैसे यहाँ है, तो वहां तू भी इसी हालत में ही होगा जैसे आज है। इतनी तजहीक करते थे, इतना जलील करते थे, इतना हकीर जानते थे कि और गुमान इतना, अपनी खुशफहमी इतनी ज्यादा थी कि आज अगर मेरे पास माल और औलाद है तो वहां पे भी तो होगी, और तुम तो वहां पे भी फकीर ही होगे, तो वहां जाके तेरी पेमेंट कर दूंगा। इस पे ये आयत उतरी है बुखारी और मुस्लिम में। अल्लाह अकबर, मैं सोचती हूँ उनके ईमान भी कैसे थे वैसे ना, आप अंदाजा कीजिए, आपको जॉब की बेहद जरूरत हो, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो, लेकिन वो जॉब वाले कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट रखते हो, आप कितनी दफा कहेंगे कि नहीं जो मर्जी हो जाए, ना ये नहीं करूंगी जॉब, अल्लाह और दे दे, नहीं ना, हम तो मरते फिरते हैं, हम कहते थे ना अल्लाह के हुक्म बाद में पूरे हो जाएंगे, ये चीजें नहीं मैं छोड़ सकती। देखना हम एक्चुअली ना ये वाकयात ना हमारे, हमें कंपैरिजन बताते हैं कि हम अपने ईमान के साथ कंपेयर करें और अपने ईमान को अपलिफ्ट करें, हमने भी इस लेवल तक जाना है, हमारा ईमान ऐसा तो नहीं लो लेवल पे होना चाहिए, इस लेवल का ईमान होना चाहिए हमारे पास। अच्छा तो उसने कहा कि मैं तो का ये बात आए ना यहाँ पे, वकाला लऊतैन्ना मालम वला था, मैं तो दिया जाऊंगा जरूर ही, इतना यकीन है उसको, मैं तो मेरे पास तो वहां पे भी होगा, वहां पे दे दूंगा। अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया, क्यों ये क्या गैब देखा है, यहाँ अल्लाह ताला ने इसके साथ कोई अहद किया हुआ है, कोई प्रॉमिस किया हुआ है जिसकी बेस के ऊपर इसको मिलेगा ये सब कुछ, कल्ला हरगिज नहीं, सनक्तुबुमा यकूल, हमने लिख लेंगे, हम हमने लिख लिया जो ये वो कहता है, वरना मुद्दू लहू मिनल आदा भी मद्दा, और हम लंबा करेंगे उसके लिए अजाब में से लंबा करना, यानी जैसे ढील अल्लाह लंबी करता है ना, इसी तरह फिर वहां पे अजाब भी लंबा कर देगा, एक्सटेंड कर देगा। वो ये कहता है कि मेरे पास माल है और वो, और मैं वहां पे जाके दूंगा, हरगिज नहीं, इसकी इन बातों को अल्लाह ने लिख दिया, और अजाब भी वहां पे लंबा ही होगा, वह नारिफुहू, और हम वारिस हो जाएंगे इसके, मा यकूल जो वो कहता है, जो ये कहता है ना माल और औलाद और ये सब कुछ, ये जितनी चीजें इंसान के पास है ना, ये चंद दिन की है ना, चंद दिन के लिए अल्लाह ताला ने दिया हुआ, इंसान समझने लगता पता नहीं हमेशा के लिए मिल गया, तो अल्लाह ताला जब चाहे जैसे चाहे जिस वक्त चाहे वापस ले ले, जितना चाहे वापस ले ले, जितना चाहे दिए रखे। आप देखते हैं लोगों को एक दिन इतने मालदार होते हैं, अगले दिन सड़कों पे आ जाते हैं, तो पता चलता है ना, अगर अपना होता तो क्यों ना अपने पास रहता, इसका मतलब अपना कुछ नहीं है, तो वो उसको पड़ा था मेरा खानदान, मेरा कबीला, मेरी औलाद और मेरा पैसा माल, मेरे साथी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वयतीना फरदा, और हमारे पास आएगा अकेला। मैंने आपको बताया ना यौमा फिर मरुना खीब भी अभी वो उस दिन तो इंसान भागेगा इनसे, अकेला अल्लाह के पास आना होगा। अल्लाह की कितनी मखलूक खड़ी होगी कि अव्वल से लेके आदम अलैहि सलाम से लेके आखिरी आदमी तक मैदाने हशर में मौजूद होगा, फिर भी इंसान अकेला। कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई साथी, कोई संगी, कोई हमदर्द, कोई 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 लीडर, कोई कोई जिनके पीछे दुनिया में इतनी इतनी अपनी जानें खपाते फिरते थे, कोई तो आ जाता, कोई तो साथ देने के लिए खड़ा हो जाता। चलो नहीं सजा भुगत सकते, साथ ही देने के लिए, सपोर्ट के लिए खड़ा हो जाए। नहीं, बिल्कुल ही अकेला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हर चीज के वारिस तो हम हैं, हमारे पास ही वापस आ जानी है। इंसान किधर लेकर चला जाएगा? कोई इंसान ले जाता हुआ देखा कि वो अपनी कब्र के अंदर अपने प्लॉट और अपने पैसे और अपने घर और अपनी गाड़ियां सारी लेके कब्र के अंदर चला जाए? नहीं ना, उसके ऊपर ही छोड़ के चला जाता है। हसारों को अपने खाली हाथ ही जाते देखा। ओ भाई, खाली हाथ तो इतनी हद तक बात है कि ये जरा से को गोल्ड या किसी ने कुछ पहना हो, वो भी काट काट के, उतर नहीं रहा ना, काट काट के उतार लेते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं साथ ले जा सकता, तो छोड़ गया ना सब। फिर जिनके लिए छोड़ गया वो भी छोड़ जाते हैं, फिर जिनके लिए छोड़ गया वो भी छोड़ जाते हैं। तो कफन में तो कोई जेब नहीं होती, और कपड़े तक अच्छे तो पहन के नहीं जाते कि कोई बड़े फैशनेबल कपड़े पहन के चले जाए, कोई बड़े गोटे किनारी वाले कपड़े पहन के चले जाए, मेकअप भी नहीं करके जाते, जेवर भी नहीं पहन के जाते। अल्लाह हू अकबर। तो सब कुछ ही फिर अल्लाह ही का है, और वापस उसी के पास चले जाना। इंसान यहीं पर धोखा खा जाता है, और उसको ऐसे लगता है कि पता नहीं जो मेरे पास आज है ऐसे ही रहेगा, और ये मेरे पास जुबान है ना, मैं जो मर्जी चाहे बोलू, मेरे पास आंखें हैं, मैं जो मर्जी चाहे देखू, मेरी आंखें, मेरे पास ये कान है, मैं जो मर्जी चाहे सुनू, मेरे कान है, और ये मेरी बॉडी है, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूं, जो मर्जी खाऊं, जो मर्जी पीऊं, जो जब मर्जी सोऊं, मेरा इख्तियार है। बड़ा धोखे में है इंसान। यही आंखें फिर होती हैं, यही कान होते हैं, यही जुबान होती है ना, देख ले मैयत की जाके, यही होती है ना। क्यों नहीं बोलती अब, क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं उठ के खड़ा हो जाता, क्यों नहीं कहता मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैंने नहीं मरना, मुझे किधर ले जा रहे हो, किस कब्र में डाल रहे हो, मैंने नहीं जाना, क्यों नहीं कहता? बच जाता ना मौत से, बच जाए ना कब्र से, भाग जाए ना, क्यों मौत के आगे हार गया? इसलिए कि ये जिंदगी इसकी नहीं थी, ये आंखें इसकी नहीं थी, ये पैर इसके नहीं थे, ये जुबान इसकी नहीं थी, ये तो अल्लाह ने अमानतन दी हुई थी। कैसे फिर उस वक्त बेबसी की तस्वीर बने पड़ा होता है, बिल्कुल बेबस, कितना धोखे में रहा। जितनी देर ये सांस चल रही है ना, उतनी देर ये धोखा है, यूं ही सांस खत्म होती है, सारा धोखा ठीक उड़ जाएगा, ये नशा, ये जो है ना, मैं जब चाहूं जो चाहूं करूं, मेरी मर्जी, मर्जियां सब खत्म हो जाने। अल्लाह अकबर। सोच ले बोलने तक का तो इख्तियार रहता नहीं है, कुछ और क्या करना, इतनी जुबान छोटी सी चीज है ना, इतनी भी नहीं चला सकता, इतनी भी छिन जाती है, बिल्कुल बेख्तियार हो जाता है जो कल तक इख्तियार का मालिक था। ये समझ आती ही नहीं हमें, क्या करें। अल्लाह अकबर। तो फिर अकेले ही आना होगा, वही अतीना फरदा, फिर हमारे पास वो आएगा अकेला ही। वत्तखजू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, और उन्होंने बना लिया अल्लाह के सिवा कुछ आलिहा, लियकूनु लहुम इज्जा, कि उनके लिए इज्जत के बायस हो जाए। इज्जा का मतलब गलबा भी है, मदद भी है, इज्जत भी है, कि ये हमारे मददगार हो जाए, हमारे लिए गलबे का बायस बन जाए। ये अल्लाह के अलावा और बनाते हैं ना उनको, अपने इला बनाते हैं, इनके थ्रू हमें इज्जत मिल जाए, इनके थ्रू हमें पावर मिल जाए। ये चाहने के लिए वो इनको, इनकी इबादत करते हैं। कल्ला, हरगिज नहीं। सयकफुरून भी इबादत ही व यकूनून अलैहिम जिद्दा, हरगिज नहीं, अनकरीब वो इनकी इबादत के भी इनकारी हो जाएंगे, वो कहेंगे हमारी क्या तुम इबादत करते थे, इनकार करेंगे। आपने देखा नहीं सूरह मायदा के अंडे हम पढ़ चुके हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे, अल्लाह ताला फरमाया ईसा क्या तुमने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को इलाह बनाओ, हरगिज नहीं, अल्लाह मैंने तो नहीं कहा, मैं नहीं जानता ये क्या करते रहे मेरे पीछे से। इन तो आजिब हूं, इन्हों में बाद हो, अगर तूने इनको अजाब देना तो दे दे, ये तेरे ही बंदे। मैं नहीं कुछ कह सकता, मैं नहीं इनका जिम्मेदार, तो वो ही इनके मुखालिफ हो जाएंगे। अगर ईसा अलैहि सलाम ये करेंगे तो बाकियों का क्या कहना, जो अपनी जान छुड़ाते फिर रहे होंगे, वो क्या खातिर में लाएंगे। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीना अल काफिरीन तअज्जुहुम अज्जा, क्या तुमने देखा नहीं कि हमने छोड़ रखा है शैतानों को काफरों पर, उभारते हैं उनको, उभारना। यानी मैंने आपको बताया ना, पहले वर्ब आया फिर मस्दर आ गया ना, यानी उसके अंदर ना बहुत एग्जेजुरेशन आ जाती है, यानी इतना उनको जोश दिलाते हैं, इतना अज्जा मतलब होता है हंडी का उबाल, उनको ना इंस्टिगेट करते हैं कि करो ये काम करो ये काम, यानी इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, आप सल्लम के खिलाफ, इस तरह से ऐसे ये शैतान हमने छोड़ रखे हैं, यानी इनको भेज दिया है, इनको छोड़ा हुआ है इनके ऊपर कि वो जाए, अब जाए, ये इनको ढील दी हुई है ना अल्लाह ताला ने शैतान को। उस जब उस आपको वो स्टोरी पता है, हम पढ़ चुके हैं सूरह आराफ में, कि जब अल्लाह ताला से इसने मोहलत मांगी थी तो अल्लाह ताला ने इसको क्यामत तक मोहलत दे दी हुई है। तो इसने तो वादा किया था कि मैं सीधे रास्ते से इनको बहकाऊंगा। ये अब इंसान के अंदर जहां से जहां तक हवा जा सकती है ना, ये भी वहीं दाखिल हो जाता है। इसीलिए तो फरमाया कि खून की तरह गर्दिश करता है इंसान के जिस्म में, इंसान के अंदर दौड़ता है। तो आप इसी वजह से देखते हैं ना, बैठे बैठे किसी को पता नहीं क्या तकलीफ होती है, कि एक दिन वो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं कुरान को जलाने लगा, एक दिन बैठे बैठे अल्लाह जाने क्या होता है, कहते हैं कार्टून बनाने शुरू जाता है। आप क्या ये मसला है, मसला ये कि शैतान इनके ऊपर लूज छोड़े हुए हैं अल्लाह ताला। इस्लामोफोबिया क्या है, ये शैतान है, इनको इंस्टिगेट करते उभारते हैं, इनको कहते हैं कि तू कर रहा आ गया से। बाज मुसलमान होते हैं, हम पता नहीं अपना सॉफ्ट इमेज देंगे ना तो हमें फिर ये कितने एक्सेप्ट कर लेंगे, तो मॉडर्न हो जाते हैं, अपने दीन को ही छोड़ देते हैं ताकि ये जो है ना इस्लामोफोबिया खत्म हो जाए और ताकि ये हमें अच्छा समझने लगे। या आज सोचते हैं कि भाई हम ये मसलन आप अगर इंडिया में रहते हैं तो हम ये अगर हिंदुओं के इनके फेस्टिवल्स के अंदर इसमें हिस्सा लेंगे, इनके उसके ऊपर हम भी कुछ पैसे दे देंगे इनको, जो ये अपनी पूजा वगैरह करते हैं और ये करते हैं, तो पता नहीं हमें अच्छा समझने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना। लन तरदा अंकल यहूद व नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये यहूद व नसारा तुमसे कभी राजी नहीं होंगे जब तक तुम इनकी मिल्लत में ना आ जाओ। इसी तरह बाकी काफिर भी, वो तो नहीं आपसे राजी होंगे, देते रहे उनको पैसे, कोई अपनी जमीन दे रहा है, कोई अपने उनके फेस्टिवल्स में हिस्सा ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उनके बुत के आगे ही जो है ना वो भी चढ़ावा ऐसे ही प्लेट को ऊपर नीचे जो वो करते हैं क्या पता नहीं जो भी इसको कहते होंगे उसको करता है, वो उसी तरह ये कर रहे हैं कि ये खुश हो जाए हमसे। इनके ऊपर तो शैतान आए हुए हैं जो इनको इंस्टिगेट करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ये आप करो ये आप कर दो, आपको उसी औरतें बुरके के साथ आ रही हैं तो इनको ना कॉलेज जाने दो, ये क्या है, इसके पीछे शैतान है ना। मगर बंदा सोचता है ना कि इनको क्या हो गया, अरसे से रह रहे थे, इन्होंने आप क्या ये शुरू कर दिया। तो ये शैतान अपना खेल खेलते हैं और ये शैतानों के हाथों में खेल जाते हैं। और उस वक्त भी ऐसा ही था, और आज हम सोचते हैं ना कि आज बड़ा मुश्किल है, आज बड़ा मुश्किल, ये वक्त बड़ा मुश्किल, ये जमाना ऐसा, इसमें तो ऐसा। अल्लाह की कसम पहले जमाने कोई कम नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के जो मसाइब, जो जुल्म, अगर आप पढ़ लेना इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप सोच ही नहीं सकते। हजरत सुमैया की शहादत का पढ़ लें तो आपको कई दिन नींद नहीं आती कि क्या उनके साथ हुआ था, क्या क्या मजालिम उन गुलामों लौंडियों उनके साथ किए जा रहे थे। तो फिर आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा आज, लेकिन हम ही बहुत नाजुक हो गए और हमारी कमिटमेंट अपने दीन के साथ नहीं रही उस तरह से। उन्होंने इतने मजालिम सह के भी अहद अहद कहना ना छोड़ा, और हमें गरम लू भी चल जाए तो हमें हाय पता नहीं हम इस दीन की वजह से, उतारो हिजाब बदलो नाम छोड़ो ये दीन, इसकी वजह से मुसीबतें। हमारा तो ये हाल है कि बस इतनी सी बात को भी किसी के माथे पे तेवरी आ जाए ना हमें देख के किसी काफिर के, तो हमें वो भी इतना वो लगता है, हम इतने डर जाते हैं, इतने डरपोक। मुसलमान तो डरता नहीं सिवाय अल्लाह के, वो तो नहीं किसी से डरता। उसका ईमान है जो उसको स्ट्रांग करता है, ये नहीं कि उसके अंदर ताकत ज्यादा है, उसका ईमान है जो उसको स्ट्रांग करता है। वो अल्लाह पर ईमान रखता है, उससे ज्यादा जिगरे वाला तो कोई हो नहीं सकता, उससे ज्यादा दलेर, उससे ज्यादा बहादुर नहीं कोई हो सकता। उसका ईमान उसको बहादुर बनाता है, तो कमी कहाँ आई फिर? ईमान में कमी आई, जो आज भिखमंगों की तरह हम उनको राजी करने के लिए कि हम आपको देते हैं। अच्छा आप अपनी, मुझे किसी ने पूछा क्या, मुझे वर्ड भी नहीं पता, उसने कहा ये क्या अलाउड है इसके अंदर पैसे देना? मैंने कहा ये क्या चीज है? तो उन्होंने कहा ये वो है कि जो उनके हिंदुओं के फेस्टिवल है उसके अंदर वो अपने बुतों को लेकर जाते हैं, क्या पता नहीं क्या चीज उसका नाम था, तो उसके ऊपर हम दे सकते हैं पैसे बाद में अगर हम तौबा कर लें, इसलिए ताकि वो हमें एक्सेप्ट कर लें, पर हमें कुछ कहे ना। यानी ये हाल आ गया हमारा आज, हमारा हम इस हद तक आ गए कि हमसे खुश हो जाए। आपका मतलब है आप उनको पैसे देंगे वो आपसे खुश हो जाएंगे, आपसे वो राजी हो जाएंगे? अल्लाह अकबर। और एंड में हाल ये हुआ कि ना वो राजी होंगे और अल्लाह को भी नाराज कर लिया, तो जाओगे किधर फिर? फिर किधर, कौन सी जमीन तुम्हें पनाह देगी, कौन सा आसमान तुम्हें अपने नीचे लेगा? तो इस भूल में ना रहना कि ये हमसे राजी ही हो जाएंगे, अनलेस ये है कि उनका ही दीन अपना लो, उस ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उनको राजी करने के लिए। फला ताजल अलैहिम, तो ना आप जल्दी करें इन पर, इन्नमा नअद्दु लहुम अद्दा, हम गिन गिन के रख रहे हैं उनके लिए गिनना, आप जल्दी ना करें कि अल्लाह इनका काम क्यों नहीं तमाम हो जाता, अल्लाह ये हम तो हक पे हैं, ये तो बातिल हैं, या अल्लाह इनको सजा क्यों नहीं मिल जाती? इंसान इतना फ्रस्ट्रेट होने लगता है, इंसान कहता है हाय इनकी पकड़ क्यों नहीं हो रही, अल्लाह तू ही इनको पकड़ लेना। तो जब ऐसे आप देखते ना इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो फिर आपको ना अंदर से शेक होने लगते हैं, और ना इंसान के उस वक्त भी ईमान का पता चलता है जब उस वक्त जब इंसान ऐसे हालात को देखता है कि इस तरह मुसलमानों के साथ हो रहा है, कोई उनको पूछने वाला नहीं, उनके पास जुल्म हो रही है, वो कहते हैं हाय इनको तो कोई पकड़ ही नहीं ना, तो पता नहीं उसका ईमान अंदर से कमजोर होने लगा, कहाँ है अल्लाह, कहाँ है अल्लाह की मदद, फिर वो ऐसे कहने लगता है। जब ऐसे करता है और उसको जल्दी होती है कि जल्दी ऐसे इन बस हम देखें कि इनके ऊपर अजाब आ जाए, हम देखें कि इनको सजाएं मिल रही है, इनका बेड़ा गर्क हो जाए, ये तबाह हो जाए, हम ये चाहते हैं। वो अल्लाह ताला फरमाते हैं फला ताजला नहीं है। थोड़ा सा ना आप उस टाइम में ना जरा जाके देखा करें, जिस वक्त ऐसे मसाइब आप देखते ना फौरन एकदम जजमेंटल ना हो जा करें, ये सूरतें हमें यही तो बताती हैं, ये फौरन ये सोचना लिया करें कि फिर अल्लाह की मदद कहाँ है, फिर हमारा तो कोई है ही नहीं, फिर अल्लाह ताला कहाँ है, फिर हमें तो उसने छोड़ दिया, फिर ईमान ही बाज लोग अपना लूज कर देते हैं। नहीं देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी लोगों ने कैसे मसाइब सहे थे, और अल्लाह ताला ने फरमाया आप जल्दी ना करें इन पर, वो तो अल्लाह के पैगंबर थे, तो काफिर दर्दनाते फिरते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनका डंका बज रहा था, वो जुल्म की इंतहाएं कर रहे थे, और आप सल्लम को कहा जा रहा है आप जल्दी ना कीजिए। नहीं हत्ता के एक साहबी आप सरसरा काबे के साथ टेक लगाए हुए बैठे हुए थे, तो एक साहबी आए फरमाया मता रसूलुल्लाह कब आएगी, या रसूल अल्लाह की मदद कब आएगी, हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें आई। तो आप सल्लम ने क्या फरमाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होके आगे होके बैठ गए, और आपने फरमाया तुमसे पहले लोगों पे तो इससे भी ज्यादा मसाइब आए, उनके जिस्मों को लोहे की कंघियों से नोच दिया गया, लोहे की कंघियां लेके ना जिस्म के अंदर रख के गोश्त के अंदर, और पूरी कंघियां चलाएंगे कि रेशा रेशा हो जाए, उनके सर रख के बीच में से आरे रख के काट दिए गए, लेकिन उन्होंने अल्लाह के कलमे को ना छोड़ा। मुझे बताएं मैं और आप क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने? ये बस जरा सी बात होती है तो हम इतने परेशान हो जाते हैं, हम फौरन कहने लगते हैं कहाँ हो गया, हाय हो गया, हाय हम तो लुट गए मारे गए, हमारे तो पता नहीं अजाब के इंतहा हो गए, सबर कहाँ गया हमारा, दलेरी कहाँ गई हमारी, जुर्रत कहाँ गई हमारी, कहाँ है हमारा ईमान? तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम क्यों जल्दी करते हो? हमने इनके लिए इनके हर काम को, हर बोल को, हर बात को, हर इशारे को हमने गिन गिन के रखा है। इनकी एक एक सांस को अल्लाह ने गिना हुआ है, एक एक सांस को। क्यों डिसहार्ट होते हो? क्यों जल्दी मचाते हो कि क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता अल्लाह का फैसला, क्यों नहीं अल्लाह इनको पकड़ता? क्यों? वहां पे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और सहाबा थे, उनकी दुआएं थी, फिर भी अल्लाह ताला ने फरमाया जल्दी मत करो। और यहाँ पे तो हमारे जैसे हैं जिनके पहले ही अमल ही कुछ नहीं, तो क्या आएगी अल्लाह की मदद? तो अल्लाह ताला ने गिन रखा है, गिन रखा है, फिक्र ना करो, उसके पास सारा रिकॉर्ड है। यौम नाशुरुल मुत्तकीना इला रहमानी वफदा, तुम मुत्तकीन की शान उस दिन देखोगे जिस दिन उनको रहमान की तरफ ले जाया जा रहा होगा, जमा किया जा रहा होगा। कैसे? वफदा। हम कहते हैं ना फला मुल्क का डेलीगेशन आया हुआ, उनका वफद आया हुआ। तो जब किसी जगह के वफद आते हैं तो कैसे उनके रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, दोनों तरफ लोग खड़े होते हैं, फूल फेंक रहे होते हैं। ये तो दुनिया के प्रोटोकॉल हैं। जब वो रहमान की तरफ ले जाए भी जा रहे होंगे ना तो उनकी शान ही अलग होगी। लेकिन मुत्तकीन की याद रखिए, फिर बात वही तकवा पे आ गई। और फिर सोच ले मैंने आपको क्या बताया तकवा के बारे में। अल्लाह अकबर, कई ऊंटनियों के ऊपर सवार होंगे, उनकी शान होगी, गर्दनें ऊंची लंबी होंगी, वो कैसे शान से ले जाए जा रहे होंगे, उनकी क्या इज्जतें हो रही होंगी। वह नसूकुल मुजरिमीना, और ये हांक के ले जाए, जैसे हांका जाता है ना जानवर को, डंडे मार मार कर उनको हांक के इधर को उधर को लेकर जाए, इनको हांक के ले जाया जा रहा होगा जहन्नुम की तरफ। वीरदा। अब अभी मैंने आपको वरूद का बताया ना, इसके माने बताए, तो एक माना प्यास भी है, प्यासे होंगे, इनको हांका ले जाया जा रहा होगा जहन्नुम के गेट्स की तरफ। वहां पहुंचा के वहां पे आगे वो जहन्नुम के दारोगों के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन जो उनको ले जाया जाना है ना वो भी कोई इज्जत से नहीं होगा, हांक के ले जाया जा रहा होगा। वो सोचे जैसे मुजरिमों को बांध के ले जाया जाता है चेन्स के अंदर, पीछे से उनको डंडे भी मारते हैं और कहते हैं चलो सीधे होके चलो, कैसी जिल्लत है। और मोमिनों को तसल्ली दी जा रही है कि तुम फिक्र ना करो, क्यों जल्दी करते, तुम देखना वहां का ऑनर क्या होगा। देखिए एक मेहमान में और एक मुजरिम में तो बहुत फर्क है ना। एक मेहमान की आप कैसी, दुनिया में भी हम मेहमानों की कैसी इज्जत करते हैं। जितनी भी हमारी इस्तात होती है, हम चाहे गरीब बंदा भी हो, फिर भी वो अपनी इस्तात के मुताबिक मेहमान को इज्जत देता है। तो रब के जो मेहमान हो, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला उनको कैसी इज्जत से नवाजेगा, ये तो उस दिन पता चल। और मुजरिमों का क्या हाल हो रहा होगा। और ला यमलिकून शफात, नहीं मालिक होंगे सिफारिश के, इन्होंने ना खुद की, खुद तो किसी की सिफारिश कर ही नहीं सकते, इनके लिए भी कोई सिफारिश नहीं करेगा। शिफात है मगर इल्ला मन इत्तखज़ इंद रहमान अहदा, मगर उसके लिए जिसके लिए रहमान ने बना लिया कोई अहद, कोई रहमान के पास उसका कोई अहद था, रहमान से उसने कोई अहद किया हुआ था। क्या अहद? यानी तौहीद, शिर्क से बेजारी, शिर्क नहीं कभी किया था, तौहीद पे था, जिसने तौहीद पे जिंदगी गुजारी, जिसने जितनी जिंदगी गुजारी वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारी, तो फिर तो उसके लिए सिफारिश है, ये अहद है ना। अल्लाह ताला फिर अल्लाह का क्या अहद है बताएं, कि जो मेरे बंदे होंगे। देखिए वो वाली हदीस को याद करते हैं, मुआज बिन जबल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भेज रहे थे ना, तो आपने फरमाया मुआज अल्लाह का बंदों पे हक क्या है और बंदों का अल्लाह पे क्या हक है। तो हजरत मुआज फरमाते हैं अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआज अल्लाह का बंदों पे हक बताए क्या है, वो ये है कि सिर्फ उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें। और फिर बंदों का क्या हक बन जाता है, ये बंदे नहीं अपना हक खुद कह रहे, ये अल्लाह ताला ने ही खुद फरमाया है कि फिर बंदों का मेरे ऊपर हक ये है, बंदों का अल्लाह पे हक। हालांकि बंदों का अल्लाह पे कभी हक हो ही नहीं सकता, लेकिन ये अल्लाह ताला ने ऑनर दिया। फिर जो ऐसा करेगा ना कि अल्लाह के साथ किसी को इबादत में शरीक नहीं करेगा, फिर बंदे का, उस बंदे का अल्लाह पे हक हो जाता है कि अल्लाह ताला उसको अजाब नहीं देगा, अजाब नहीं देगा। तो अल्लाह ताला ने अहद किया हुआ कि अल्लाह अपने बंदों को रुसवा नहीं करेगा, ये अल्लाह का अहद है जो उसके आगे सबमिट कर देते हैं, जो उसके बंदे बन के रहते हैं। उफी भी आहदी, औफू भी आहदी, उफी भी आहदी को, तुम अहद पूरा करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारे साथ अहद पूरा करेगा। तुम पहले अहद पूरा करके दिखाओ, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, उसकी इताअत करो। उसके फरमा बरदार बन के रहो, तो अल्लाह भी तुम्हारे साथ अहद को नहीं तोड़ेगा, वो भी तुम्हें रुस्वा नहीं करेगा। तो लिहाजा उस दिन कोई क्यों इन ऐसे मुजरिमों के, कौन ये दुनिया में भी कोई मुजरिम हो, कोई बागी हो, कोई मसलन ऐसा बंदा हो जिसने किसी मुल्क में गद्दारी की हो, तो उस गद्दार का कोई भी सिफारशी नहीं बनता। कहता मैं क्यों अपनी जान फंसाऊं, कहता कि मैं क्यों अपने, कोई टेररिस्ट हो उसके लिए कोई सिफारिश करने खड़ा होगा, वो कहेगा है मुझे ही ना पकड़ ले, कोई भी नहीं खड़ा होगा। तो वो ये अल्लाह के मुजरिम है, इनके लिए कौन सिफारिश करेगा, ना ये खुद अपने लिए कोई सिफारिश कर सकते हैं। हाँ सिफारिश होगी मगर इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमान, ये एक्सेप्शन है, जिसका रहमान के पास कोई अहद होगा तो उस अहद को पूरा करना है। वकालु तखदर रहमान वलदा, और वो कहते हैं रहमान ने तो बेटा बना लिया, रहमान का तो एक बेटा है। अब वलदा का मतलब बेटा भी हो गया और वलद का मतलब औलाद भी होता है, और औलाद मतलब मुशरिकीन ने मक्का कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, ईसाई कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा, यहूदियों में एक सेक्ट ऐसा है जो कहता उजैर अल्लाह का बेटा, तो वो कहते हैं सबकी नफी कर दी। देखे यहाँ पे वकालत रहमान वाला था, वो कहते हैं रहमान ने एक बेटा बना लिया। अब यहाँ पे भी देखें सुभान अल्लाह रहमान कह के ना ये बात बताई गई, हालांकि ये कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। लकद जी तुम शई अन इद्दा, तुम लेकर आए हो ऐसी बात जो हॉरेबल बात है, इतनी सख्त, जैसे कहते हैं नामुनासिब बात है, इतनी सख्त बुरी बात है। और तब भी क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला का नाम आया ना रहमान, तो इसकी सिग्निफिकेंस देखें कि वो रहमान है तो छोड़े हुए है, वरना अगर उसका रहम ना होता ना तो जितनी भयानक बात इन्होंने की है इनको तबाह करके रख देता हो। इसलिए कि ये देखें अभी मैंने आपको शुरू में हदीसे कुदसी सुनाई है ना कि ये अल्लाह को गाली देना है कि कहे कोई कि अलखुदा का बेटा है, ये गाली देना है। ये तो हमें ही ये बातें बड़ी नहीं लगती, तो हम कहते हैं अच्छा ये क्यों जहन्नुम में जाएगा, जो कि कोई बात नहीं है, लेकिन वो तो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा चैरिटी वर्क करते हैं, बहुत लोगों की खिदमत करते हैं, बड़े अस्पताल बनाए, बड़े यतीम खाने बनाए, ये क्यों जहन्नुम में जाएंगे, जबकि ये इतनी बुरी बात है। फरमाया इद्दा, इतनी भयानक बात है, हमें भयानक लगती नहीं, इसीलिए तो हम वो जब ईसा अलैहि सलाम की बर्थडे मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, तो हम बहुत खुशी से उनको मुबारकबाद भी देते हैं, मैं अपने घर में भी सेंटा बन के बैठ जाते हैं और गिफ्ट लेते हैं, और क्रिसमस ट्री भी खड़ा करने से क्या फर्क पड़ जाता है, ईसा अलैहि सलाम की हम भी बर्थडे मनाएं, ईसा अलैहि सलाम की नहीं मना रहे, वो खुदा के बेटे की, के खुदा का आज बेटा पैदा हुआ। और शर्मनाक बात है ये कि मुसलमान जिनके कुरान में ये लिखा हुआ है कि लकद जी तुम शई अन इद्दा, तुम इतनी भयानक बात लेकर आए हो, वो जाके उनके साथ बैठ के और वो भी मना रहे हैं, उनको ये बात खौफनाक लगती ही नहीं, लेकिन ये इतनी खौफनाक बात है, इससे अंदाजा लगा दें आप इस आयत को देखेंगे कि कितनी बड़ी बात है। तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु, ये ऐसी बात है कि इस बात से करीब है कि आसमान फट पड़े, आसमानों के ऊपर ये बात इतनी भारी है, यानी ये बात अल्लाह की मखलूक भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए कि अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक है ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शऊर जरूर मौजूद है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जैसे हमें तो लगता है नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये, तो जाहिर है इनमें क्या शऊर होगा, लेकिन ठीक है इंसानों जितना नहीं है, इंसानों जितनी अकल समझ नहीं है, ऐसी अकल समझ को क्या करना जो उसके बाद अकल होके भी शिर्क करे, लेकिन इनके अंदर फिर भी थोड़ा शऊर है। ठीक है, इसीलिए इब्ने अब्बास ने फरमाया जिन्नों और इंसानों के अलावा तमाम मखलूकात अल्लाह तला के साथ शिर्क से बहुत डरती हैं, और उनको ये खतरा है कि वो रेजा रेजा हो जाएंगे, इतनी बड़ी बात है कि वो कांप जाती है, उसको लगता है आसमान को लगता है कि मैं फट ही जाऊंगा। अस्तग़फिरुल्लाह वतनशक्कुल अर्ध, वतनशक्कुल अर्ध, और जमीन का ये हाल है कि शक हो जाए और सारों को अंदर ले जाए, वो कांप जाती है। यानी इनके ऊपर भी ना इन चीजों का असर होता है। इसका मतलब है कि जो काम हो रहे हैं ना जमीन के ऊपर, आता है ना कि समुंदर कहते हैं या अल्लाह हमें तू इजाजत दे तो हमें इनके ऊपर चढ़ दौड़े, ऐसे ऐसे गुनाह जब इंसान करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है नहीं मैं इनको मोहलत दूंगा, तो आसमान भी करीब है कि फट जाए। और देखिए आपके आसमान को जो हम क्या सोचते हैं कि मजबूत चीज है, वो भी इतनी हैबत में आ जाता है, इस कदर उसके ऊपर असर होता है। और जमीन जो इतनी सख्त चीज है, वो भी कहती है कि मैं फट जाऊंगी और मेरे ऊपर नहीं, इतनी भारी बात है उसके ऊपर कि मैं इंसानों को अंदर ले जाऊं। नहीं, वो आसमान एक महफूज छत ना रहे और जमीन को ही, वो अल्लाह ताला ने फरमाया ना आसमान को एक महफूज छत बनाया, जमीन को तुम्हारे लिए हमवार बनाया, पहाड़ों को तुम्हारे लिए गाड़ दिया, तो वो अपनी हिफाजत भी खींच ले और जमीन जिसको तुम आराम से चलते फिरते हो ये भी महफूज ना रहे, फटती पड़े और इंसानों को अंदर ले जाती रहे। और पहाड़ों का क्या हाल है, तखिरुल जिबालु हद्दा, और गिर पड़े पहाड़ रेजा रेजा हो गए। कितनी सोचे इंसान है, इतनी सी मखलूक है, और कैसे वो शिर्क करके और फिर अकड़ता फिरता है। और माशाल्लाह जो मुसलमान भी, उनको शिर्क का कुछ पता ही नहीं, उससे उनको वो फर्क ही नहीं पड़ता, वो भी कहते हैं कि नहीं ठीक है कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन आसमानों जमीन और पहाड़ जैसी सख्त मखलूक की एग्जाम्पल दे के बताया गया कि उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है, बर्दाश्त से उनसे बाहर वो कांप जाती है। तो क्या पहाड़ों के अंदर भी कोई हिस्सा है? इसका मतलब है कि उनके अंदर भी जी हाँ हिस है, अल्लाह की अजमत का एहसास है और उनको ये शऊर है कि ये कितनी बुरी बात है, जमीन गुस्से में फट जाए और पहाड़ पाश पाश हो जाए। देखिए ना हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से पूछता है कि आज कोई ऐसा भी तेरे पर चढ़ा है जिसने अल्लाह का जिक्र किया? तो वो खुशी से झूम झूम के जवाब देता है हाँ मेरे ऊपर ऐसा आया है। बस पहाड़ भी बातिल बात को, झूठ बात को और भली बात को सुनते हैं, कलाम नहीं कर सकते लेकिन सुनते हैं। फिर उन्होंने यही इसी आयत की तिलावत फरमाई, देख लो इनको भी इतना शऊर है। इसीलिए रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने जब जमीन को और इसके दरख्तों को पैदा किया था तो हर दरख्त इब्ने आदम को फल फूल और नफा देता था, लेकिन जब जमीन पे रहने वालों ने अल्लाह के लिए औलाद का लफ्ज बोला तो जमीन हिल गई और दरख्तों में कांटे पड़ गए। काब कहते हैं मलाइका गजबनाक हो गए और जहन्नुम जोरों शोर से भड़क उठी। इसीलिए तो जहन्नुम कहेगी ना जिस वक्त उसको लाया जाएगा, वो क्यों गुस्से में फट रही होगी कि इन्होंने रहमान की नाफरमानी की, इन लोगों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कि हर एक चीज के अंदर इसमें इतनी, वो अपने मालिक को पहचानते हैं ना, वो उन इंसानों से बेहतर है जो इंसान अक्ल और शऊर रखते हुए भी अपने मालिक का इनकार कर, उनकी नाफरमानी उसकी नाफरमानी कर। इसी तरह आप देखिए, मैंने आपको ईसा अलैहिस्सलाम का बताया था सूरह कहफ के अंदर कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे और उसके बाद फिर सब मुसलमान ईमान वाले ही हो जाएंगे दुनिया के अंदर, तो एक एक अनार पूरा पूरा कबीला खाएगा, एक एक गाय का दूध कितने 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 100 लोग पिएंगे और इतनी सब बरकतें होंगी, हर तरफ बरकतें होंगी। वो क्यों होगा? दुनिया में गुनाह नहीं होगा, ना शिर्क होगा ना कोई गुनाह होगा, तो बरकतें ही बरकतें। ये जो बरकतें उठ जाती है ना, वो इसलिए हमारे गुनाहों की वजह से, शिर्क की वजह से, और हमारे जितने भी गुनाह हैं, अल्लाह की जितनी नाफरमानियां इस जमीन पे हो रही हैं, जितना जुल्म हो रहा है, जितनी ऐसी बातें हो रही हैं, उन सब से बरकत उठ जाती है। इसीलिए आप देखें कहीं भी बरकत नहीं रही, बहुत कुछ भी है लेकिन बरकत उठ गई है। अल्लाह अकबर। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को ईजा देने वाली बातों पर अल्लाह ताला से ज्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं। लोग इसके साथ शरीक ठहराते हैं, उसकी औलाद मुकर करते हैं और वो इन्हें आफियत देता है, रोजियां पहुंचाता है, इनके ऊपर से मुश्किलों को टालता है। बस उनकी इस बात से कि अल्लाह की औलाद है, जमीन और आसमान और पहाड़ तक तंग है और अल्लाह की अजमत और शान के लायक नहीं कि इसके यहाँ औलाद हो, नहीं इस बातों से ये चीजें भी तंग हैं, उनको भी गरां गुजरती हैं, तो फिर क्यों नहीं फट जाता आसमान, क्यों नहीं फट के रेजा रेजा होता जाता और उसके ऊपर से सारे सितारे नीचे गिर जाते और जमीन भी फट जाती है और सारे इंसान चले जाते और पहाड़ भी रेजा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनको इजाजत नहीं दी। अल्लाह ताला इंसान को फिर भी मोहलत देता है। ये है रहमान, ये है रहमान, ये है उसका रहम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप देख रहे हैं ना, बार बार इसीलिए तो रहमान का लफ्ज आ रहा है। किस बात से, फिर दोबारा इस बात को दोहराया गया कि किस बात से ये फट पड़े और किस बात से ये रेजा रेजा हो जाए पहाड़। अंदाउ लिर रहमानी वलादा, कि उन्होंने रहमान के लिए दावा किया है औलाद का, रहमान के लिए कहते हैं औलाद, उसके साथ मंसूब करते हैं औलाद को, इस बात की वजह से फट जाए। अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये छोटी बात नहीं है, हमेशा याद रखें जब आप शिर्क करते हुए किसी को देखें तो ये याद रखें कि ये छोटी सी चीज नहीं कर रहा कोई, ये अल्लाह और रहमान को गाली दे रहा है। अगर आपको और कुछ भी नहीं याद रहता, और इस आयत को तो हाईलाइट कर लें आप, बहुत इस आयत की आप बहुत कुछ आपको याद रहेगा, और बहुत जगह पे आप इसको सुनेंगे, आयत नंबर 90 को, कि ये कितनी बड़ी बात है। अगर बाकी चीजें इससे इतना असर लेती हैं और उनके ऊपर इतनी भारी है, तो इंसान के ऊपर भारी नहीं होनी चाहिए जो कलमा पढ़ता है एक रब का, जो कहता ही है ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अगर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो इस चीज से खुश होता है और इन चीजों को देख के बहुत मुतमईन रहता है, और उसको जरा सी भी उसके चेहरे पे उसके माथे पे तेवरी भी नहीं चढ़ती, बल्कि वो कहता है इनको भी जन्नत में जाना चाहिए जो भी शिर्क करता हो, तो फिर उसके ईमान का हाल देख ले। और कितना उसको पता है कुरान का, ये भी समझ आता है। वामा यंबगील रहमान ये तखिज वाला था, और नहीं है लायक रहमान के, उसको ये भी नहीं देता, उसके लायक ही नहीं है कि वो औलाद ठहराए। और ये हम पहले बहुत दफा पढ़ चुके, क्यों नहीं उसको औलाद की हाजत, क्योंकि औलाद होना इंसान की एहतियाज है, उसकी वो मोहताज होता है औलाद का। इसलिए तो जिनकी औलाद नहीं है वो कितनी दुआएं करते हैं, और अल्लाह ताला तमाम बे औलादों को नेक और साले जिंदगी वाली औलाद अता फरमाए। ये इंसान की एक मतलब मोहताजी है ना, उसको उसकी जरूरत है ये, और अल्लाह ताला जरूरत से पाक है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, वो गनी है, वो बेनियाज है, वो असमद है, फिर उसके लिए औलाद ठहराना। ना उसको बुढ़ापा है, ना उसको अपनी विरासत के लिए किसी की जरूरत है, ना अपने काम चलाने के लिए जरूरत है, ना किसी की मशवरे की जरूरत है, ना उसकी ताकत में कोई कमी होनी है कि उसको जरूरत हो औलाद की, फिर क्यों ठहराए वो औलाद। ना उसको बुढ़ापा है इंसानों की तरह, तो क्यों ठहराए, ना उसको कंपनी चाहिए, वो अकेला ही है, आहद है। तो इंसानों के साथ ये कमजोरियां हैं, इसीलिए उनको औलाद चाहिए। ना उसको अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है, क्योंकि वो हय और कयूम है, उसको मौत नहीं। इंसान अपने बराबर ही लाके खुदा को भी खड़ा कर देता है। वो अच्छा, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दी इल्ला आतिर रहमाने अब्दा, कोई नहीं आसमानों और जमीन में, इससे तो नफी कर दी ना कि कोई इसे बाहर रह ही नहीं गया, आसमानों और जमीन में यानी जो कोई भी है, मन जो कोई भी है, वो रहमान के सामने बंदा बन के आएगा, बंदा बन के आएगा। यानी मन का वो ना जिल हूल को कहते हैं, जिनके अंदर कुछ समझ सेंस हो, तो वो कैसे आएंगे, अकड़े हुए नहीं आएंगे, सरदार बन के नहीं आएंगे, गुलाम बन के आएंगे, चाहे वो फिरौन ही क्यों ना हो। जब वो रहमान के सामने पेश होगा, सबकी अकड़ खत्म हो जानी है, सब बादशाहों की बादशाहतें खत्म हो जाएंगी, अल्लाह के अब्द बन के आएंगे, और तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अब्द बनने में। तब ये सारी शोखियां और सारी बड़ी बड़ी बातें और सारे तकबर और सारी अकड़, ये सब खत्म हो जानी है, झुके हुए आएंगे जो आसमानों और जमीन। फरिश्ते तो पहले ही झुके हुए, जिन्नो इंस भी झुक जाएंगे, बड़े बड़े जिन्नात शयातीन, शैतान को भी आग का लिबास जाएगा सबसे पहले, वो भी ऐसे आएगा कि झुका हुआ। तो सब अल्लाह ताला के सामने उसके अब्द हैं, गुलाम है, तो गुलाम तो बच्चा नहीं हो सकता। और असमावात और अर्द में फरिश्ते भी आ गए, ईसा अलैहि सलाम भी आ गए, उजैर अलैहि सलाम भी आ गए, सारे पैगंबर आ गए ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए। तो मुझे बताए ना फिर ये कहाँ से हम कर लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम देना कि अल्लाह ताला के साथ ही बिठा देना, जैसे इतना ऊंचा मकाम दे देना कि अल्लाह ताला के बराबर कर देना, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है आसमानों और जमीन में जो कोई भी है मगर वो इस तरह आएगा अल्लाह के आगे कि उसका अब्द होगा, उसका गुलाम बन के आएगा। और अब्दियत के अंदर क्या आती है? आजजी। उस अब्द के लफ्ज में, गुलाम के लफ्ज में ही आपके दिमाग में एकदम क्या आता है? आजजी, नीचा होना, ठीक है, कमजोरी, ये सब चीजें आती है ना। वो अल्लाह के आगे ऐसे कमजोर, आजिज, बेबस, बिल्कुल ऐसे छोटे होके आएंगे, बहुत छोटे होके। अल्लाह अकबर, काश इंसान दुनिया में अब्द बन के रह ले, क्योंकि वहां तो अब्द बन के जाना ही होगा। असल बात है यहां पे कौन अब्द बन के चलता है, यहां पे कौन अल्लाह के आगे झुक के चलता है, या यहां पे अपनी मर्जियां चलाता है। लकद असाहुम वअद्दहुम अद्दा, हमने घेर रखा है और गिन रखा है, गिनना। अल्लाह अकबर, सारी इंसानियत, जितने भी लोग हैं, जो भी आने वाले हैं, सबका हर हर एक्शन गिन रखा है। और नॉट ओनली एक्शन, इवन सांस तक भी गिनी हुई है, सांस भी। इसीलिए वो किसी शायर ने कहा ना कि ये जिंदगी जो है ये गिनी हुई सांसों का मजमूआ है, सांसें हैं जो गिनी हुई है। कि मसलन कहते हैं कि एक इंसान शायद एक जगह पे पढ़ा कि 24,000 सांस लेता है एक दिन और रात में। तो उस शायर ने कहा कि इंसान की जिंदगी क्या है, सांसें ही है ना कुछ। जब एक सांस चला जाता है तो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है कि बढ़ जाता है। हम तो बड़ी सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे मनाओ भाई, अब इतने साल के हो गए, एक साल खत्म हो गया कि बढ़ गया? हाँ, कितनी नादानी है ना। तो एक सांस चला जाता है तो जिंदगी का एक हिस्सा खत्म हो जाता है। हाँ, फिर किसी ने कहा कि कैसे कोई नौजवान इस दुनिया की लज्जतों का मजा ले सकता है, जबकि उसका हर लफ्ज जो वो बोलता है और हर सांस जो वो लेता है वो गिना हुआ है। एक भी ज्यादा सांस नहीं उसने लेनी, एक सांस भी ज्यादा नहीं ले सकेगा। अल्लाह हु अकबर। तो अल्लाह ताला ने तो घेर भी रखा है और गिन भी रखा है। वह कुल्लुहुम आती ही यौमल कियामती फरदा, सारे के सारे आने वाले हो कयामत के दिन, अकेले 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 ही जाना है, अकेले ही आए थे। कहाँ गए वो जत्थे, कहाँ गया वो पैसा, कहाँ गई वो दौलत, कहाँ गए वो बैंक बैलेंस, कहाँ गई वो जायदादें, कहाँ गए वो जेवर, कहाँ गए वो मेरे कपड़े। फर्द फर्द, ये चीज ना इंसान को हिला के रख देती, बड़ी सख्त आए थे। इंडिविजुअली आना होगा। देखिए अच्छा, इंसान अगर तकलीफ में होता है ना, क्यों आप देखने जाते हैं किसी बीमार को, या जब किसी के घर कोई फौतगी हो जाते हैं क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि देखे, एक इंसान का जब गम होता है ना तो उसको तसल्ली की जरूरत होती है, हर इंसान को। वो उसको चाहे पता भी है कि भाई मेरा कोई फौत हो गया, वापस थोड़ी उसने आ जाना है इनके तसल्ली देने से, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म है कि भाई जाओ जाके उसको तसल्ली दो, उससे उसका दिल बंध जाता है। ठीक है, बीमार होता है, उसे आप चंद अच्छी बातें करते हैं, उसका दिल बहल जाता है। वो क्या दिन होगा जब अल्लाह के आगे अकेले ही खड़े होना है, इतना मजमा है तब भी अकेला है कि कोई ये भी नहीं करता कि आके दो तसल्ली के बोल ही बोल जाए कि कोई बात नहीं, ठीक रहोगे तुम। नहीं, अकेला अकेला होना ही ना इंसान को डिप्रेस कर देता है। वो इस दुनिया में भी अकेला नहीं रहना चाहता, इसलिए इंसान अपने इर्द गिर्द लोगों को जमा करता है, कभी औलाद को बुलाता है, कभी रिश्तेदारों को बताता है, कभी दोस्तों में बैठता है, कभी दावतें करता है। अकेला उसपन उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन कितना उसका दर्द बढ़ जाएगा कि जब वो देखेगा मैं अकेला रह गया। पता चलता है ना हमें हदीस से भी कि इंसान को अकेला ही हाजिर होना होगा। इस हाल में उसके दाएं तरफ देखेगा तो तब भी अमल, बाएं तरफ देखेगा तो तब भी अमल, सामने देखेगा तो जहन्नुम नजर आ रही होगी, आग नजर आ रही होगी, और उसके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा कि कोई वकील ही साथ ले आया कि नहीं, मेरी मेरे तो इतनी अच्छी तरह बात नहीं कर सकती, तो आप मेरी जरा वकालत कर दें, तर्जुमानी करते, नहीं कोई भी नहीं होगा। इसीलिए फिर आपसे सलम ने फरमाया था ना कि फिर सदका करो, चाहे एक तमर ही, एक खजूरी दे दो, खुद को अपने आप को आग से बचाओ। तो पहले तो देखें, आप देखें मुत्तकीन को भी ग्रुप्स में लाया जा रहा है, जहन्नुम वालों को भी सीखा का भी लफ्ज आता है सूरह जुमर में, तो यहाँ पे भी हांक के लाया जा रहा है, वो बताया गया। लेकिन जब अल्लाह ताला के सामने पहुंचने का वक्त होगा ना, उस वक्त बिल्कुल ही अकेला हो जाना इंसान ने, उस वक्त नहीं किसी ने साथ होना। और ये सबकी बात है, सारी इंसानियत के लिए ये, सबको अल्लाह के सामने अब्द बन के आना है, सबकी सांसें गिनी, सबका एक एक एक्शन, एक एक बोल गिना हुआ। हम तो अपने बोल खुद भी नहीं जानते, यकीन करें कल तक की या सुबह तक की भी नहीं बात याद होती, एक एक घूंट जो लिया, एक एक निवाला जो खाया, अल्लाह वो अकबर, एक एक चीज गिनी भी। वही अमल मिसकाला जर्रतिन खैर यरा, वही अमल मिसकाला जर्रतिन शर यरा, खैर का भी जर्रा भी गिना हुआ है और शर का भी जर्रा भी देख लोगे। सब ही गिन गिन के चीजें रखी और फिर अकेले हैं बस। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला तो हम पे रहम फरमाना उस दिन, तो अकेला है और अल्लाह तेरे आगे हमने अकेले पेश होना। और आप देख लें दुनिया से भी तो जाते हुए यही हाल होता है, चाहे जनाजे में हजारों लोग शरीक हो जाएं, हर जाने वाले को अकेले ही जाना पड़ता। अब फिर अल्लाह ने अकेले ही हिसाब किताब करना है कि जिस वक्त बुलाया जाएगा फलां बिन फलां आ जाओ, इतने मजमे में खड़े हुए जिसका नाम लिया जाएगा उसने अकेले ही आगे हाजिर होना है। अपने साथ बच्चों को नहीं ला सकता, अपना छोटे बच्चे को भी कभी साथ इसलिए ले लेते ऐसी तसल्ली के लिए, माए हम लोग ले लेती हैं ऐसे, अलग छोटे बच्चे ने हमें क्या क्या हमें सपोर्ट करना है, लेकिन बस चलो मेरे साथ कोई हो जाए, हम कहते नहीं मैं अकेली क्या जाऊं, चलो मेरे साथ कोई हो जाए। इन अल्लाह के सामने तो बिल्कुल ही अकेले खड़े होना होगा। फिर जो ईमान लाए और सारे अमल किए, क्या आप सोचते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, अभी तक आपने बहुत जगह कुरान में पढ़ा, आज एक यूनिक बात भी पढ़ रहे, बहुत ही प्यारी आयत। ये देखिए ये सारी आयतें बड़ी हैवी हैं, लेकिन जो ईमान लाए और अमले साले किया, तो उनके लिए यहाँ पे जो चीज बताई गई ना वो डिफरेंट है, वरना पहले हम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फिया, आप यू आर एक्सपेक्टिंग दिस कि आगे ये आएगा, राइट? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना, लेकिन आज एक और चीज है जो रहमान ने बताई, और इस आयत में भी रहमान है। तकरीबन 16 जगह पे इस आयत के अंदर 16 जगह ही बनती है, 16 जगह पे इस आयत में रहमान अल्लाह ताला का ये नाम आया, और इतना किसी भी नहीं सूरत में कुरान की आया इतनी दफा ये नाम। तो जो ईमान लाके सौले अमल करेंगे, आप क्या सोचते हैं अल्लाह ताला क्या देगा उनको? जन्नत तो देगा ही, एक और चीज भी देगा, सयजअलु लहुमुर्रहमान, पैदा कर देगा, इंस्टिल कर देगा उनके लिए रहमान वुद्दा, मोहब्बत। किसके दिल में मोहब्बत? बहुत प्यारी आयत है ये, किसके दिल में मोहब्बत? अल्लाह ताला खुद भी उससे मोहब्बत करने लगेगा, वो रहमान है ना इसलिए, और अल्लाह ताला लोगों के दिलों में भी उसके लिए मोहब्बत डाल देगा, लोग भी उससे मोहब्बत करने लगेंगे। इसलिए कि हमें हदीस से भी पता चलता है कि जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है ना, तो अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाता है कि बुलाता है और बुला के फरमाता है, ए जिब्राइल मैं फुलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं, फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमानों में उतरते हैं और निदा देते हैं कि अल्लाह ताला फुलां बंदे से मोहब्बत करता है, फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो, तो सारे आसमान के फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उसकी मोहब्बत अल्लाह ताला जमीन पे उतार देता है, तो फिर जमीन वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं, अल्लाह अकबर। और इसी तरह अल्लाह की नाराजगी भी है। अब आप सोचेंगे शायद आपके जहन में ये ख्याल आए कि अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देता है, लेकिन ये तो वो जो लोग गाने बजाने वाले और ये है, और वो जो लोग एक्टर एक्ट्रेसेस हैं और ऐसी हैं, उनकी तो बहुत फैंस हैं और उन लोग बहुत उनके ऊपर मरते हैं और ऐसे हैं वैसे हैं। तो बात ये है कि ये ईमान वालों के दिल में जो मोहब्बत है उसकी बात हो रही, ईमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते। और फिर ये वो मोहब्बत है जो अनकंडीशनल है, किसी लालच में नहीं है कि मुझे ओहदा मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाए, या मुझे इससे कोई फायदे मिल जाए, नौकरी दिला दे कल को, मेरे ये कॉन्टेक्ट बन जाए, ये उससे नहीं, ये बेलॉस मोहब्बत है। आप इसीलिए देखते हैं ना, सहाबा ने आपको आके कोई कहा हमसे मोहब्बत करें है? उनको तो हमारा पता भी नहीं है हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इसी तरह मुहद्दिसीन है, सालेहीन है, स्कॉलर्स हैं, हमारे उसाज़ा इकराम होते हैं, हम उनसे मोहब्बतें करते हैं। और अक्सर होता है कि उनको तो पता भी नहीं है कि भाई कौन है मुझसे मोहब्बत करा, चाहे वो जिंदा भी हो, जो फौत हुए उनको तो वैसे ही नहीं पता, जो जिंदा है उनको भी नहीं पता हो। लेकिन वो क्या होता है, अल्लाह ताला वो मोहब्बत डाल देता है उनके लिए। लेकिन ये देखिए, हम इंसान ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत लेने के लिए लोगों की ना, ये मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती ना पैसों से, तो इंसान ना मोहब्बत लेने के लिए ना बड़ी कोशिशें करता है। इंसान कहता है कभी वो किसी तरह का काम करेगा, कभी कैसे कि बस सारों की आंखों में मैं जच जाऊं, लोगों की बस मोहब्बत मुझे मिल जाए, लोग मुझसे प्यार करने लगे, लोगों की आंखों का तारा बन जाऊं, ऐसे हो जाए। मगर ये अल्लाह डालता है जिसके लिए चाहे, क्योंकि दिल अल्लाह के हाथ में होते हैं, ये हमारे करने से नहीं होते। बल्कि अगर इंसान करेगा ऐसा कि मैं इनकी मोहब्बत पालू, मैं इनकी जितनी मर्जी कोशिश करता रहे वो नहीं मोहब्बत पा सकेगा। जैसे वो ना हजरत हसन बसरी फरमाते ना, एक आदमी ने इरादा किया कि अल्लाह की इबादत इस तरह करूं कि लोग मेरी नेकी की शोहरत पा जाए, सारे लोग मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे। तो वो अब वो इबादत में लग गया, इतनी इबादत कर रहा है, सबसे पहले मस्जिद आ रहा है, सबके बाद मस्जिद से जा रहा है, इस तरह 7 महीने गुजर गए। लेकिन जब भी वो देखता था तो लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे थे, बड़ा रियाकार है, बड़ा दिखावा करता है। तो उसने ये हालत देखी तो वो तो मायूस हो गया लोगों से, उसने कहा कि मैं क्या इनके पीछे ये कर रहा हूँ, क्यों ना मैं अल्लाह को खुश करने के लिए कोई अमल करूं। तो फिर उसने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए खालिस नीयत के साथ अमल करना शुरू किया, नेकियां शुरू की। फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों में हर बंदे की जुबान पे, क्योंकि ये तो अल्लाह ने डालना है ना, हर बंदे की जुबान पे क्या था, अल्लाह ताला फलां पे रहम रहे, वो वाकई बड़ा अल्लाह वाला बन गया। तो ये हजरत हसन बसरी ने फिर इसी आयत की तिलावत फरमाई, सुभान अल्लाह। इसलिए ये नहीं कि हम किसी के दिल में पैदा कर सकते, तो हम ऐसे काम कर करके दिखाएं ताकि लोग हमसे बड़ी मोहब्बत करने लगे, ऐसे नहीं होगा। लोग पसंद करने लगे, लोग मेरी तारीफें करने लगे, लोगों की नजरों में मैं जज जाऊं, ये नहीं। बल्कि ईमान और साले अमल इसमें लग जाए, इसमें अपने आप को खपा दे, आप देखेंगे लोगों के दिलों में आपके लिए खुद ब खुद अल्लाह जगह बना देगा। अल्लाह ताला ऐसे करता है, उसकी हुकूमत दिलों पर है। तो आप फिक्र इस बात की ना करें कि लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे थे, तारीफें की थी उसने मेरी, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मेरी फैन फॉलोइंग कितनी है, कितने लोग हैं जो मुझे आजकल इस सोशल मीडिया पे, इस पेज पे मुझे कितने फॉलो कर रहे हैं, इसकी आप ना फिक्र करें। बस ईमान और सारे अमल ये करने लगेंगे तो देखिएगा फिर कैसे अल्लाह उन आपको लोगों के लिए प्यारा बना देता है। और फिर ऐसे ही लोग होते हैं कि फिर उनके जनाजों में भी लोग शिरकत करते हैं, तो देखें जिसके जनाजे में 40 ईमान वाले आ जाए और उसके लिए दुआ करें, जनाजे की नमाज पढ़े, उसके लिए दुआ करें, 40 ईमान वाले, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश कर देता। 40 लोग थे ईमान वाले जो उसे मोहब्बत करते थे ना, इस मोहब्बत का तो फायदा दुनिया में भी हुआ, आखरत में भी। तो ये नुस्खा है मोहब्बत पाने का, हमने उल्टा रास्ता लिया हुआ मोहब्बत पाने का। हम कहते हैं कि पता नहीं, मैं लोगों को खुश करने के लिए इनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगी तो फिर पता नहीं मुझे इनकी मोहब्बत मिल जाएगी, जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही करने लगो, इसको भी खुश कर दिया, हाँ हाँ तुम भी सही कह रही हो, उसको भी गए उसके पास भी, हाँ तुम भी, पता नहीं इस तरह ये मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे, ये नहीं, इस तरह से नहीं मोहब्बत मिलेगी। आप नेकियों पे जुट जाए, ईमान इखलास, तो ये अल्लाह की रहमत है, जो मोहब्बत है ना ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह ही डाल सकता है। आप देख ले, ये जो फिर दूसरे लोगों की मोहब्बत है वो अनकंडीशनल मोहब्बत नहीं। कितने लोग हैं जो उनके बाद उनको याद करते हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे होते हैं। उनमें कोई ना कोई लालच होगा, फिर वो खुद भी वो लोग वैसे ही होंगे जो उनसे मोहब्बत करने वाले, ऐसे लोगों से जो बुरे होते हैं, क्या वो उनके जनाजों पे जाएंगे। और देखिए आपके अब्दुल्ला बिन मुबारक का जब जनाजा पढ़ा गया, वो इतना बड़ा जनाजा था, इतने लोग आए उस जनाजे में कि उस मौके पर लोगों ने कहा कि ये है वो मोहब्बत जो अल्लाह दिलों में डाल देता है। तो ये अल्लाह ताला की खास इनायत होती है, और अल्लाह ताला की तरफ से एक समझ लें एक रिवॉर्ड है इस दुनिया में जो अल्लाह ताला अता फरमाता है। और जिसको खालिस मोहब्बत मिल जाए किसी की, फिर इससे ज्यादा बड़ी और क्या बात हो सकती है। मोहब्बत, इंसान मोहब्बत होती है तो इज्जत भी होती है। वरना आप देखें बड़े बड़े सियासतदान होते हैं, बहुत उनके पीछे लोग आते हैं, बड़े उनके जलसे होते हैं, बहुत लोग उनमें शिरकत करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या गालियां दे रहे होते हैं उनको। तो ये है जो अल्लाह ताला, आप आपको पता चला कि जन्नत तो ईमान और साले अमल की बेस पे है ही है, लेकिन मोहब्बत भी मिल जाएगी इंसानों में। उससे ज्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है कि अल्लाह मोहब्बत करने लगे, फरिश्ते मोहब्बत करने लगे और इंसानों में भी मोहब्बत आ जाए उनके दिलों में। फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका, तो बेशक ए नबी हमने इसको, किसको, कुरान को। अभी पीछे कुरान की हालांकि बात नहीं हुई, लेकिन ये अंडरस्टूड माना है यहाँ पे कि इसका माना कुरान है। हमने इसको आपकी जुबान के ऊपर आसान कर दिया, एक तो अरबी जुबान में था, दूसरा इसको आसान बना दिया इस कलाम को। ली तुबशिर बिहिल मुत्तकीन, ताकि आप क्या करें, बशारत दे मुत्तकी लोगों को। देखिए कितनी प्यारी ये बशारत है, जो मुत्तकी होगा वो ये सुन के कितना खुश हो जाएगा कि अल्लाह ताला उसके लिए वुद पैदा कर देगा। सहाबा ने कितनी मुश्किल जिंदगियां गुजारी, कितने मसाइब सहे, लेकिन अल्लाह ने कैसी वुद पैदा कर दी। वो अलवदूद है, और उसने मोहब्बत डाल दी, रहती दुनिया तक जितने ईमान वाले आएंगे उनसे मोहब्बत करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी इसी तरह। वतुंजिरा बिही कौम लुद्दा, और ताकि आप उनको वॉर्न कर दें जो झगड़ालू कौम है, जो बस बहसे करते हैं, उनका काम बहसे करना और कुछ नहीं है, बस कोई बात निकाल लेनी उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट शुरू कर देना, उनको इंतजार कर दें इस कुरान के जरिए। तो वाकई इस कुरान के जरिए ही इंसान को दावत का काम करना चाहिए। इस कुरान को अल्लाह ने आसान कर दिया, सहूलत वाला बनाया, फैसिलिटेट कर सकते हैं आप इसको फैसिलिटेट कर दिया। तो अब इसके बाद इंसान ये कहे नहीं, जो बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है, ये नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ताला ने आसान किया। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कुरान के जरिए तबशीर भी की और इसी कुरान के जरिए इंजार भी किया। लिहाजा इसी कुरान के जरिए हमने दावत का काम करना। वकम अहलकना कबलहुम मिन करनिन, और कितनी ही हलाक हो गई इनसे पहले कौमों में से, कितनी पता नहीं कितनी। अब जब कहा गया ना कितनी ही, तो मतलब है कि बहुत सारी। ये जो हमें पता चलता है तो चंद एक कौमों का पता चला जो कुरान में जिनके जिक्र आ गए, या हम दुनिया में जिनके खंडरात देख लेते हैं, कहीं खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ पे भी कोई कौम दफन है, ये पता नहीं इसके ऊपर क्या आजाब आया। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इन जगहों पे जाकर देखे कितनी खुदाइयां हुई, क्या फिर कौम लूत किधर है, तो वो तो हमने कुरान से पढ़ी। और पता नहीं कितनी कौमें हैं जो तबाह हो गई। हल तो हिस्सू मिन हम मिन आहते, क्या तुम्हें उनकी कोई महसूस भी होती है, महसूस भी करते हो उनमें से किसी एक को भी? औ तस्मा उलहम रिक्जा, या तुम सुनते हो उनमें से किसी की आहट भी? मैंने बिल्कुल, अल्लाह ताला ने कैसे खामोश कर दिया उनको। आज उनकी जरा सी भी कोई एक बंदा भी उनका उठ के आके नहीं कह रहा कि अच्छा हम यहाँ पे रहा करते थे और हम इतनी बड़ी कौम थे और हम ये थे। नहीं, कोई भी नहीं। अल्लाह ताला ने कैसे उनको तबाह व बर्बाद करके रख दिया, खत्म कर दिया। बड़े बड़े जाबिर, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े अमीर आए जो कहते थे हमारे मुकाबले का कोई नहीं, मगर आज कहाँ गई वो आवाजें। बहुत शोर करते थे, बहुत झगड़े करते थे, बहुत बहसें होती थी। कहाँ गया वो फिरौन, कहाँ गया वो नमरूद, कहाँ गया कारून, कहाँ गया अबू जहल, कहाँ गया अबू लहब। तो ये है कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये क्या अपने आप को समझते हैं, पिछली कौमों के हालों से इबरत पकड़ो और अल्लाह का मुकाबला करने की कोशिश ना करो, अल्लाह के आगे झुक जाओ, उसकी ताकत को समझो, उसकी कुव्वत को समझो, बड़े ना बनो यहाँ पे, अब्द बन के चलो, रहमान के अब्द, वो तो रहम और रहम और रहम वाला ही, उसकी रहमतों के तो अंदाजे इंसान नहीं कर सकता। अगर इंसान अंदाजा कर सके ना तो खुद ही झुक जाए कि इतने रहमान के आगे मैं क्या सर उठाऊं, इतना रहम करने वाला रब, तो वो इतना रहम करने वाला है, उसके आगे झुक जाओ, वो अपनी रहमतों की बारिश तुम पर करेगा। अल्लाह ताला इस सूरत से हमें सबक लेने की तौफीक अता फरमाए और इसमें जो मैसेज है उसको याद रखने की तौफीक अता फरमाए, उसके मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.